मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।
ओम शांति, ओम शांति। सभी ने चार पांच दिन की भट्टी कर ली है और अब तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो गई होगी। हाँ, चार्ज हो गई है सभी की बैटरी। जो समझते हैं हम फुल बैटरी चार्ज करके जा रहे हैं वो हाथ उठाओ। ये पूरा साल चलेगी या छह महीना चलेगी, कितना समय चलेगी? जो कहते हैं पूरा साल चलेगी वो हाथ उठाओ। अच्छा, आधे भी नहीं उठा रहे हैं, क्यों? और जो समझते हैं छह महीने चलेगी फिर दोबारा आना पड़ेगा बैटरी चार्ज करने, वो हाथ उठाओ। अच्छा, वो भी उठा रहे हैं। अच्छी बात है, सच बोल रहे हैं। हाँ, तो बाबा हमेशा कहते हैं बादल भरने आते हैं सागर के कंठे पर। ये है सागर का कंठा और यहाँ पर हम आत्माएं रूपी बादल ज्ञान से भरपूर हो गए, योग की शक्ति से भरपूर हो गए, धारणा की गहराई हमने समझी है और अब जाकर सेवा करेंगे। सही है, सेवा करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हम ज्ञान सुनाकर ही सेवा करते हैं। बहुत तरह से मनसा वाचा कर्मणा हम सेवा करते हैं। अगर मन हमारा शक्तिशाली है, मन शुद्ध है, मन में सदा देने की भावना है तो हम मनसा सेवा भी करते रहते हैं। अपनी वृत्ति से हम वायुमंडल बनाते हैं और वाचा से अपने अनुभव सुना करके हम कई आत्माओं को मार्गदर्शन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाषण ही करना है, लेकिन जो भी हमारे संबंध संपर्क में हमारे मित्र संबंधी हैं उनको हम अपने अनुभव तो सुना ही सकते हैं। बाबा कहता है अनुभव सुनाना सबसे सहज सेवा है लेकिन सबसे श्रेष्ठ सेवा है। सबसे ज्यादा प्रेरणा किससे मिलती है, किससे मिलती है? अनुभव सुनने से मिलती है। देखो यहाँ भी आपके सामने बैठकर जो क्लास कराते हैं वो जब अपने अनुभव सुनाते हैं तब ज्यादा अच्छा लगता है, है ना? ज्ञान सुनने से ज्यादा अच्छा, उनको ज्ञान से जीवन में क्या मिला, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, या मम्मा बाबा के जीवन के अनुभव की बातें जब हमने सुनी तो शायद हमें ज्यादा समझ में आता है ना? तो ऐसे ही हमारा भी अनुभव जब हम दूसरों को सुनाते हैं तो वो सुनाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सोचना भी नहीं होता, वो बहुत दिल से अपने आप वो शब्द निकलते हैं जो हमारे दिल का अनुभव होता है और वो दूसरे के भी दिल तक लगता है। जो दिल से कही हुई बात होती है वो दिल तक लगती है और जो मुख से कही हुई बात होती है वो सिर्फ दिमाग तक रह जाती है। दिमाग तक रहना माना बहुत अच्छी बात सुनाई लेकिन वहां से उठे और भूल गए क्या अच्छी बात सुनी, लेकिन जो दिल में लग गई वो हमेशा याद रहेगी ना? तो ये फर्क होता है। जानकारी है वो भी ये बेहद की सेवा में बाबा की मददगार हैं। तो अभी हमें जाकर के वो सेवा करनी है। मुझे याद है दादी प्रकाश मणि जी कहते थे ईच वन टीच वन, ज्यादा मत पढ़ाओ भले लेकिन मुझ एक को अपने समान एक को जरूर तैयार करना है, यानी मेरे हम जीन्स की सेवा मुझे करनी है। ये तो मुश्किल नहीं है। तो ये लक्ष्य भी हमने रख लिया कि साल में एक को मेरे समान बनाना है। चलो वो फिर उनको बाप समान बनने की भी हिम्मत आ जाएगी लेकिन कम से कम हमारे समान हम बनाएं। तो ये सब हम बादल भरकर यहाँ से अब जा रहे हैं बरसने के लिए। अब कहाँ तक बरसते हैं, अब वो छोटा बादल है, बड़ा बादल है, अब आप जानते हैं बादल भी कितनी तरह के होते हैं ना। एक बादल होता है एक ही जगह पे बरस जाता है, थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो बारिश आ ही नहीं रही है। एक बादल होता है पूरा घना होता है, पूरा शहर या पूरा स्टेट बरस जाता है और इतनी बारिश होती है घंटों तक चलती है। तो अब सागर से हमने कितना भरा है वो हम पर निर्भर करता है कि हम कितना बरसने वाले हैं, थोड़ा सा बरसने वाले हैं या पूरा बरसने वाले हैं। ठीक है, तो हम सभी को बाबा ने बहुत स्वमान दिए हैं। बाबा ने हमें तिलकधारी तख्तनशीन ताजधारी बनाया है, तो हम तिलकधारी बच्चे हैं। वो भक्ति मार्ग वाला तिलक नहीं लगाते हम, कौन सा तिलक लगा रखा है? हमारा तिलक अविनाशी तिलक है जो मिटे नहीं, वो तिलक बाबा ने हमें लगाया है। कौन सा तिलक लगा हुआ है? कौन सा तिलक? आत्मा की स्मृति का तिलक। मैं आत्मा हूं, ये स्मृति हमें निरंतर रहे। मैं देह हूं, पहले ये स्मृति निरंतर रहती थी, एक पल भी हम ये नहीं भूलते थे कि मैं शरीर हूं। लेकिन जब बाबा ने हमें ये स्मृति दिलाई है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये शरीर तो मेरा माध्यम है, ये शरीर को मैंने धारण किया है, तो फिर आत्मिक स्मृति नेचुरल होनी चाहिए। लेकिन वो इतनी नेचुरल बनती नहीं है। है सबको आत्मिक स्मृति नेचुरल है? या कब आती है वो स्मृति? जब योग में बैठते हैं, क्योंकि योग में तो आत्मा समझकर याद करेंगे तभी योग लगेगा। बाबा ही कहता है देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो देह को पहले भूलना होगा, तब बाबा से हमारा कनेक्शन जुड़ सकता है, क्योंकि उसके समान मेरी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तभी मेरी वेवलेंथ बाबा के साथ मैच करेगी, तभी बाबा से मुझे जो चाहिए वो प्राप्ति का अनुभव होगा। नहीं तो कनेक्शन जुड़ेगा नहीं, तार से तार जुड़ेगी नहीं, जुड़ेगी नहीं तो फिर मैं कितना भी योग करती रहूं फिर भी लगेगा योग तो किया लेकिन बाबा का प्यार तो अनुभव हुआ नहीं, बाबा की शक्ति तो अनुभव हुई नहीं। क्यों नहीं अनुभव हुई? क्योंकि सही विधि पूर्वक मैंने बाबा को याद नहीं किया। तो फिर हम कोशिश करते हैं योग में कि मैं आत्मा हूं ये स्मृति रहे, लेकिन सारा दिन फिर बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं या कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। हाँ, बच्चों को संभालना है, घर को संभालना है, समाज की रीति रिवाज जो भी हैं उनको सबको निभाना है, सारी बुद्धि फिर उसमें लग जाती है, तो मैं आत्मा हूँ ये भूल जाता है। और ये भी भूल जाता है मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाबा ने केवल ये स्मृति नहीं दिलाई मैं आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देवी देवता बनने वाली आत्मा हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं ही बाबा की चुनी हुई कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। कितने स्वमान बाबा ने हमें स्मृति में दिलाए हैं। तो कोई ना कोई स्वमान यानी मैं कौन सी आत्मा हूं ये स्मृति में रहना चाहिए। मन केवल सांसारिक स्मृतियों में रहे वो तो दुनिया वाले भी रहते हैं, दुनिया की संसार समाचार इसकी उसकी बातें मन बुद्धि में रख कर के काम करना, प्रवृत्ति चलाना, ये साधारण जीवन है जो दुनिया में भी लोग जी रहे हैं। लेकिन हमारी अलौकिक जीवन है, साधारण जीवन नहीं है। अलौकिक स्मृतियों से बनेगी। तो मुझे बाबा ने जो स्मृतियां दिलाई हैं वो कोई ना कोई स्मृति मेरे मन में रहे। मैं कौन हूं, मैं क्या कर रही हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा घर कहाँ है। अभी हम बताते ना परिचय में, तो हमारा अब वो नाम रूप कर्तव्य धाम परिवर्तन होकर के अब अलौकिक हो गया। अब मेरा वो नाम नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, जो मैं पहले थी अब वो नहीं, लेकिन ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ। तो उस अनुसार मेरे कर्तव्य भी अब वो नहीं है जो पहले थे, अब मेरे कर्तव्य कर्म ऊंच और श्रेष्ठ। हम धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनने वाली आत्माएं हैं। तो जितनी ये स्मृति होगी उतनी स्थिति श्रेष्ठ होगी और उतना खुशी और नशा हमें हर कर्म में रहेगा। इसको बोलते हैं मन खुशी में नाचता है। शरीर के नाचने की बात नहीं, शरीर से भी नाच लो तो कोई बात नहीं, लेकिन मन जरूर खुशी में नाचे। और वो कब होगा, जब बाबा की दी हुई स्मृतियां। नहीं तो क्या होगा, दुनियादारी की बातों में कोई बात में उलझ जाएंगे, कोई में परेशान हो जाएंगे, कोई बात में टेंशन आ जाएगा, कोई बात में अशांत हो जाएंगे, होता है मूड ऑफ हो जाएगी, उदास हो जाएंगे, तो मन पर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन बाबा के ज्ञान की स्मृति रहेगी तो हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। सब कर्म करते हुए भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव ज्ञान से ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। क्योंकि वो समझ हमें बाबा ने दी है कि उस कर्म को कैसे करो, किस स्मृति से करो। तो हम अविनाशी स्मृतियों के तिलक धारी बने। बाबा ने तो हमें तिलक दिया है लेकिन हम मिटा तो नहीं देते। किसी को आदत होती है ना, तिलक लगाओ तो ऐसे लगता है यहाँ कुछ खुजली हो रही है, तो ऐसे हाथ करेंगे फटाफट तिलक मिटा देंगे। मिटाते नहीं, मिटाते। तो बाबा ने हमको तिलक तो दे दिया। बाबा ने तो कहा जन्मते ही सबको एक जैसा, बाबा ने भाग्य दिया है एक के द्वारा, एक जैसा एक समय। ऐसे नहीं कि मैं तो घर गृहस्थ में रहने वाली साधारण सी माता हूँ, मुझे भगवान तो थोड़ा ही भाग्य देगा, ऐसा नहीं। बाबा ने कोई अंतर नहीं रखा है। कोई भी बच्चा है बाबा का, सबको एक जैसा भगवान ने दिया, क्योंकि उसके पास अखुट है। बाबा कहता है दुनिया की सारी आत्माएं जो अरबों हैं अगर वो भी ले लें तो भी खुटने वाला नहीं है, इतना अखुट खजाना है उसके पास। देने वाले की कमी नहीं है क्योंकि वो तो सागर है, लेकिन लेने वाला अब लोटा भरे या घड़ा भरे या फिर टंकी भरे, हम क्या भरे। तो हमने उस स्मृति को कितना अपनाया है, उस ज्ञान को कितना स्वरूप में लाया है। बाबा ने तो अथाह दिया है, तो वो मुझे देखना है, तो मेरी वो स्मृति का तिलक बना रहे। तो हमने भट्टी में अच्छी तरह से समझा है, सभी दीदियों ने बहुत अच्छी तरह समझाया ना, ज्ञान के मनन चिंतन का महत्व। जितना हम मनन चिंतन करेंगे उतना वो नहीं और स्वरूप में भी नहीं। दूसरा हम बाबा के तख्त नशीन बच्चे हैं। तो तख्त नशीन, एक तो हम अकाल तख्त नशीन हैं और दूसरा बाबा के दिल तख्त नशीन हैं और तीसरा भविष्य में हम राज्य तख्त नशीन बनने वाले हैं। तो अकाल तख्त पर आत्मा विराजमान है, बाबा के दिल तख्त पर वही बैठ सकता है जो अकाल तख्त पर है, और दूसरा कौन बैठ सकता है? बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, भगवान को सच्चे दिल वाले बच्चे पसंद हैं, भगवान को सच्चाई सफाई पसंद है, और इसीलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबा के महिमा में पहले सत्य बोलते हैं, पहले ईश्वर सत्य है, फिर सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, ऐसे हमने कहा, और इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं सच तो बीठो नच। और अगर सच्चे हैं तो मन सदा ही खुश रहता है, क्योंकि जो सच्चाई सफाई वाला होता है वो निर्भय होता है, उसे किसी बात में मूंझने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम अंदर कुछ और बाहर कुछ और हैं, ऐसे होते ना, कईयों का नेचर होता है कि वो जो बाहर में जैसा व्यवहार करते हैं अंदर में वो वही सोच आपके बारे में नहीं रखते हैं, या फिर हेरा फेरी वाला स्वभाव, जिसको हम कहते हैं धोखा देने वाला, सामने कुछ पीछे कुछ, जिसको कहते हैं मुख में राम बगल में चुरी, है ना, सामने तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, जैसे ही पीठ घुमाई तो इसको हेरा फेरी कहते हैं। बाबा कहता है बाबा को चतुराई वाले बच्चे, हाँ इसको कई लोग चतुराई भी कहते हैं, आज की दुनिया में कलयुगी दुनिया में तो झूठ का साम्राज्य है ना, झूठ का साम्राज्य, झूठ का साम्राज्य माना, कहा झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, बिना झूठ के दुनिया में आज काम चलता ही नहीं, चलता है नहीं चलता, ब्राह्मणों का भी नहीं चलता है, चलता है या नहीं चलता है? आपसे पूछ रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा तो बहन जी झूठ बोलना ही पड़ता है, क्या करें, घर परिवार में रहते हैं। तो अगर मैंने गलती की किसी भी बात में तब झूठ बोलने की नौबत आती है कि मेरी गलती सामने नहीं आनी चाहिए। कोई भी अपनी कमजोरी बताना नहीं चाहता, कमजोरी छिपाना चाहता है, करते हैं लोग कमजोरी छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं, गलती छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं, क्योंकि अगर मेरी गलती प्रत्यक्ष हो गई तो फिर या तो हमें नाराजगी झेलनी पड़ेगी, गुस्सा झेलना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, शायद दो चार शब्द किसी के सुनने पड़े, या फिर मेरा नाम खराब हो जाएगा, हो सकता है ना, चार लोगों के सामने मेरी बात आ जाएगी तो मैंने ऐसा किया, नाम बदनाम होगा ना, तो नाम बदनामी से हम बचना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। तो ले लिया हमने, बच भी गए, ऐसे नहीं कि नहीं बचते, बच जाते हैं, लेकिन भगवान से बच गए, क्या कहेंगे, मनुष्य आत्माओं के सामने बच गए हम, लेकिन भगवान की नजर से, भगवान के दिल से, उसके दिल तख्त से उतर गए। बाबा कहता है सदा सदा की जो कमाई है आपने वो गंवा दी, और मानो अगर मैंने सच बोल दिया, हो सकता है एक बार मुझे नाराजगी झेलनी पड़ी, लेकिन हमने उसका भी दिल जीता और भगवान का भी दिल जीता। और इसीलिए बाबा कहता है कि जो भी हम सारे दिन में श्रीमत के विरुद्ध कोई कर्म कर लेते हैं, मानो हो जाता है हमसे, हम सभी पुरुषार्थी तो हैं, तो मुझे रात को सोने से पहले बाबा को सच सच सुना देना है। अगर मैंने सच सुना दिया तो बाबा कहता है आधा वहीं माफ हो जाएगा, और आधा जो किया है उसका भोगना तो पड़ेगा ही, कर्म से तो कोई बच नहीं सकता है। अगर कर्म मैंने किया है तो बाबा भोगे ऐसा तो नहीं होगा ना, जिसने किया है उसी को ही भोगना है। लेकिन फिर भी आधे की मार्जिन बाबा ने हमें दी है, तो यदि हम रोज बाबा को चार्ट दे देते हैं, और यदि कुछ ऐसा हो भी जाता है तो मानो हमें लगता है कि बाबा को हमने सुनाया तो उसका हाल हमें नहीं मिलेगा, मेरी बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर नहीं है, तो फिर बाबा ने निमित्त आत्माओं को रखा है। हम निमित्त आत्माओं के सामने जो भी बात है वो सच और स्पष्ट हम कह दें। तो ऐसे बच्चे जो दिल के सच्चे हैं, जो मन में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं रखते हैं, वो बाबा के दिल तख्त नशीन होते हैं। इसलिए उसे भोलानाथ कहते हैं। सच्चे दिल वालों को क्या कहते हैं, भोला कहते हैं ना, तो वो भोलों का भोलानाथ है ऐसा कहा जाता है। कई बार लोग ऐसे लोगों को बुद्धू समझते हैं कि इनको तो पता ही नहीं है, दुनिया कैसे चलती है इनको मालूम ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसी बातों से अनजान बनना ज्यादा अच्छा है। ऐसी बातों का ज्ञान रखने से अगर हमने किसी अशुद्धि को अपने में धारण किया तो हम क्या बन गए, जैसे संडे की मुरली में था, पिछले संडे को जो मुरली थी, त्याग की मुरलियां चल रही है ना बाबा की आजकल, तो उसमें बाबा ने कहा था जो वैष्णव कुल की आत्माएं होती हैं वो किसी के भी अवगुण रूपी अशुद्धि को टच नहीं करती हैं, और अगर टच किया तो भी क्या हो गए, शुद्र हो गए। तो हमने क्या टच किया, बुराई को टच किया। तो बाबा का दिल तख्त तो इतना बड़ा है कि सारी दुनिया की आत्मा बैठना चाहें तो भी बैठ सकती हैं, लेकिन फिर भी नहीं बैठ पाती हैं। क्यों नहीं बैठ पाती, क्योंकि उस तख्त पर बैठने के लिए जो योग्यता चाहिए वो योग्यता हम ब्राह्मण बच्चों में है। और तीसरी बात, एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा को ये पसंद है, एक बाप दूसरा ना कोई, यानी मेरे जीवन का आधार मेरा संसार बाबा है। तो यदि बाबा ही मेरा संसार है और किसी व्यक्ति वस्तु में मेरा आकर्षण नहीं है, हम रहते हैं परिवार में, हम रहते हैं प्रवृत्ति में, लेकिन आकर्षण नहीं है, लगाव छुकाव नहीं है, रहते हुए भी न्यारे और एक बाप के प्यारे, न्यारा और प्यारा, कर्तव्य किया, अपना कर्म किया और फिर न्यारे हो गए, या बाबा का प्यारा बनकर के हम व्यवहार में आएंगे तो हम कहेंगे एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसे नहीं कि हमें रिश्ते नाते तोड़ देने, इसका मतलब ये नहीं है। कई बार फिर कई ब्राह्मण इस चीज को गलत समझ लेते हैं। तो बाबा ने हमें तोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन उस प्रवृत्ति को शुद्ध प्रवृत्ति बनाना है। मेरे मन की वृत्ति संबंध संपर्क में आते समय कैसी होनी चाहिए, तो हम बाबा के दिल तख्त नशीन स्वयं को अनुभव करते हैं। और जो बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा है वो भविष्य में राज्य तख्त नशीन होने ही वाली है। तो भविष्य में हम राज्य तख्त नशीन बने, उसके पहले वर्तमान में बाबा हमें स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। स्वराज्य अधिकारी यानी स्वयं पर राज्य करने वाला। राजयोग का अर्थ ही है जो स्वयं की कर्मेंद्रियों पर राज्य करे, अपने आप पर, दूसरों पर नहीं। राज्य अधिकारी का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों पर राज्य करना शुरू कर दें, तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं, मुझे क्या करना चाहिए वो स्वराज्य अधिकारी। तो मेरी जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, दोनों ही कर्मेंद्रियां बाबा की श्रीमत अनुसार चले। अगर बाबा की श्रीमत अनुसार चलती हैं, बाबा ने तो हर बात के लिए श्रीमत दी है हमें, आंखों से कैसे देखना है, कानों से क्या सुनना है, मुख से कैसे बोलना है, पता है ना, सारी श्रीमत मालूम है। मन कैसे विचार करे, कैसे संकल्प चले मेरे, है ना, और बुद्धि किस तरह से जहां हम लगाना चाहें वहां लगे, सही निर्णय करे, संस्कार मेरे कैसे संस्कार हों, सब बातों का ज्ञान है। अभी तो सभी स्मृति में है, फ्रेश अभी स्मृति है हमारे को कि क्या होना चाहिए। अब जब हम क्या बोलते हैं युद्ध क्षेत्र पर जा रहे हैं, अपने कार्य स्थल पर जा रहे हैं, तब हमें वो प्रयोग करना है। मेरी आत्मिक दृष्टि वृत्ति दूसरों के प्रति सदा रहती है, यानी आत्मा भाई भाई है। आत्मिक दृष्टि वृत्ति माना किसी को भी मैं देख रही हूँ भाई भाई की दृष्टि से देख रही हूँ, और उसके अनादि स्वरूप पर मेरी नजर जाती है। बाबा इसको सबल आई कहता है, यानी मेरी सबल आई कितनी है, मेरी दैहिक दृष्टि तो नहीं जाती है। अगर देह पर दृष्टि गई तो फिर कई कई बातें मुझे नजर आने लग जाती हैं। अब देह में तो बहुत अंतर होते हैं, है ना, तो अगर मैं उसमें चली गई या किसी से प्रभावित हो गई, अगर उसमें कोई कमी है तो मुझे नफरत हो सकती है, अगर उसमें कोई विशेषता है तो मैं प्रभावित हो सकती हूँ, और प्रभावित हुई माना हम लगाव चुकाव में आएंगे, और अगर कमी दिखी तो हम नफरत में आ जाएंगे, दोनों ही गलत हैं। इसीलिए बाबा कहता है देह को देखते हुए भी नहीं देखना है, किस पर नजर जानी चाहिए, आत्मा तो सब समान है, अनादि स्वरूप में आत्मा के गुण भी सभी के समान हैं। तो मैं उस आत्मा के संपूर्ण स्वरूप को देखूं, और ये बिना अभ्यास के संभव नहीं है। हमें इसके लिए रोज अपने आप को अभ्यास देना पड़ेगा, क्योंकि 63 जन्मों से देह अभिमान के संस्कार बहुत पक्के हैं, और जैसे ही हम देह अभिमान में आते हैं तुरंत हमारे पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम अपने पुराने संस्कारों के वश हो गए, अधिकारी नहीं रहते हम लेकिन वश हो जाते हैं। मेरे संस्कार बाबा के संस्कारों के समान हो। अनादि संस्कार कौन से हैं? बाबा के समान, यानी बाबा शांति का सागर है, बाबा प्रेम का सागर है, बाबा सर्वशक्तिमान है, बाबा कल्याणकारी है, रहम दिल है, दाता है। तो मैं भी हर आत्मा के प्रति सदा रहम दिल, सदा दातापन परोपकार की भावना वाली, सदा स्नेही, सदा शांति देने वाले ये संस्कार हो मेरे। और इसकी बजाय अगर उल्टे संस्कार हो जाते हैं, सदा सुख देने वाले की बजाय हम कभी कभी दुख देने वाले भी बन जाते हैं, तो इसका मतलब मेरे पुराने संस्कार इमर्ज हो गए, शांति की बजाय अशांति दे रहे हैं, प्रेम की बजाय नफरत कर रहे हैं। तो ये चेकिंग है कि कितना मेरा संस्कारों पर अधिकार है, या मैं संस्कारों के वश हूं, यानी मैं नहीं चाहती लेकिन फिर भी मेरे से हो जाता है, क्या करूं, मेरी नेचर है। हम कहते हैं ना चाहते हुए भी मेरे से हो जाता है, मैं कंट्रोल तो करती हूं लेकिन फिर भी होता नहीं है, मेहनत कर रही हूं हो जाएगा, कभी तो हो ही जाएगा, ऐसे सोचते ना। तो बाबा कहता है कि इसका मतलब बहुत काल का अभ्यास होगा, तब समय पर हम जैसा चाहेंगे वैसे संस्कार होंगे, नहीं तो वो संस्कार हमें धोखा दे सकते हैं। ऐसे ही हमारे कानों से हम क्या सुने, स्पष्ट श्रीमत है बाबा की, क्या सुनना है, ज्ञान की बातें सुनना है। कान जो है वो पर चिंतन न सुने, कनरस की बातों में न जाएं, लेकिन ज्ञान भी हम सुनते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं सुनते हैं, पर ज्ञान सुनने का समय कम होता है और इधर उधर के कनरस की बातें सुनने का आनंद ज्यादा होता है शायद कई बार। कहते हैं निंदा का रस भी बहुत बड़ा रस है, कोई किसी का समाचार सुनाएगा तो बड़े इंटरेस्ट से हम सुनेंगे, जबकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है ना, हम उसके कोई जिम्मेवार नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बातें हम सुनते हैं, और न सिर्फ सुनते हैं कई बार फिर इधर की उधर भी करते हैं, और जब हम इधर की उधर करते हैं तब फिर क्या होता है, एक की दो लगाते हैं। कई बार कहते हैं ना कि जो कहने वाला है कभी भी वो बात को वैसे के वैसे नहीं कहता है, उसमें जरूर वो मिक्स करता है, और कई बार वो बातें राज की होती हैं जो नहीं फैलनी चाहिए। मानो समझो किसी की कमजोरी की बात है, हमारे परिवार की कमजोरी क्या हम बाहर ले जाते हैं, हम सोचते हैं नहीं मेरे परिवार की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ये भी हमारा परिवार है, दैवी परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, और अगर हम ऐसी बातें आपस में करते हैं फैलाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वातावरण को कमजोर कर रहे हैं, वायुमंडल को हम कमजोर कर रहे हैं। तो बाबा कहता है वो भी मेरा विकर्म का खाता बनता है, एक सूक्ष्म बोझ आत्मा पर चढ़ता है जो हमें उस समय फील नहीं होता है। उस समय तो हम मजा लेते हैं उसका, लेकिन बाद में हम सोचते हैं कि योग लगता नहीं, बुद्धि एकाग्र होती नहीं, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमने अवज्ञा की। देखने में लगता है छोटी बात, यूं ही तो बातें कर रहे थे बैठ के, कुछ थोड़ी पाप किया है। पिछले संडे की मुरली में ये बात भी बाबा ने कही थी कि साधारण कर्म करना और उसमें अपना समय बर्बाद करना ये भी खाता बनता है, ये भी ब्राह्मण आत्माओं के लिए, ब्राह्मण आत्माओं के लिए नहीं, ब्राह्मण आत्माएं माना सदा समर्थ कर्म करने वाले, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले। निषेध है तो मुझे ध्यान देना है। मानो मैं निमित्त हूं और मुझे किसी की बात सुननी होती है तो ठीक है मैंने सुना, लेकिन जैसे मम्मा के लिए सुना आपने, मम्मा कचहरी करती थी है ना, कचहरी करती थी तो सुनती ही थी ना, ऐसे थोड़ी कि नहीं सुनती थी। अब किसी की कोई ग्लानी की बात होगी, उसने क्या बुरा किया वही कचहरी में सुनाया जाएगा, तो जिम्मेवार है। अगर हमने सुना तो जो निर्णय लेना है उसके प्रति हम निर्णय लें और खत्म, फिर उसका पर चिंतन नहीं। हमने कभी भी बड़ों को, हम बड़ी दादी को देखा हमने, दादी प्रकाशमणि जी को, आज भी दादी जानकी जी हैं, कभी किसी की बात उनके मुख से आ जाए सिर्फ ज्ञान की बात के अलावा कोई दूसरी बात मुख से आती नहीं। मम्मा में वो गंभीरता का गुण था। अभी हमने मम्मा का स्मृति दिवस मनाया, मम्मा की विशेषताएं सुनी, तो सबसे बड़ी विशेषता मम्मा की यही थी। तो इसको हम कहेंगे मेरी कर्मेंद्रिय पर मेरा अधिकार है। अभी हम दुनिया वालों जैसे साधारण रीति से बैठे बैठे तेरी मेरी नहीं करते हैं, उससे अभी हमारा ध्यान कहाँ आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, समय मिला बाबा याद आए। कोई क्लास हम सुन रहे हैं, कोई मनन चिंतन हम सुन रहे हैं या कर रहे हैं। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको, क्योंकि टाइम ऐसा होता है ना थोड़ा। वैसे तो ज्यादातर सब जागृत ही हैं, लेकिन फिर भी एक हंसी की कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण था, उसे पास के गांव में कथा करने के लिए जाना था। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे रास्ते का भोजन दे देना, हो सकता है देरी हो जाएगी। तो उसने दे दिया। अब रास्ते में वो ब्राह्मण भोजन करने बैठा एक पेड़ के नीचे, तो वहां पक्षी बैठा था, तो वो पक्षी ने उसके खाने पर बीट कर दी उसी समय। अभी तो उसने खाना शुरू भी नहीं किया था, पक्षी की बीट पड़ गई। अब वो तो ब्राह्मण था ना, तो उनके लिए तो खाना अशुद्ध हो गया, तो उसने वो खाना छोड़ दिया और फिर मन खराब हो गया उसका। तो उसने सोचा आज नहीं जाता हूं मैं, बाद में जाएंगे। वो वापस घर लौट आया। तो पत्नी ने सोचा ये दूसरे गांव में कथा करने गए, इतना जल्दी कैसे आ गए। तो पूछते हैं क्यों आप इतनी जल्दी आ गए, आप तो दूसरे गांव गए थे, क्या हुआ। तो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि उसको पता था अपनी पत्नी का स्वभाव कि अगर इसको मैंने बताया तो ये क्या करने वाली है, सारे गांव में ये फैल जाएगा। लेकिन उसने बहुत जोर डाला, पूछती रही, तो आखिर हार के उन्होंने कह दिया उसको कि ऐसे था, जब मैं खाना खाने बैठा तो पेड़ पर पक्षी था, उसने खाने में बीट कर दी, तो इसीलिए मेरा मन खराब हो गया और मैं वापस आ गया। लेकिन तू ये बात किसी को कहना नहीं। तो उसने कहा मैं क्यों कहूंगी, सीधी सी बात है, मैं क्यों कहूंगी। अब दूसरे दिन वो गई कुएं में पानी भरने, तो चार औरतें मिली उसको, तो भूल गई, आदत थी उसकी, संस्कार ऐसे काम करते हैं ना, थोड़ी याद रहता है कि मुझे ये करना है नहीं करना। तो वहां उसने बड़े मजे से वो सारी बात सुनाई उन चार औरतों को कि ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। और अब जो बात सुनते हैं ना, वो सारी बात पूरी नहीं सुनते, कई लोग आधी आधी सुनते हैं, आधा कुछ और सोच रहे होते हैं, आधा सुन रहे होते हैं। तो उसमें से एक ने क्या सुना, पंडित जी के खाने में पक्षी गिर गया, पक्षी की बीट नहीं, क्या गिर गया, पक्षी गिर गया। फिर उसने चार औरतों से करी, तो उसमें से एक ने क्या सुना, पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। अब मुंह में पक्षी चला गया, उसने चार लोगों को सुनाई। अब उसने जब चार लोगों को सुनाई, तो उसमें से एक ने क्या सुना, पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। मुंह में चला गया कि बचाए, मतलब ये तो हो गया, पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं, ये तो चमत्कार वाली बात हो गई। तो पंचायत तक पहुंची ये बात ना, पंचायत ने सोचा हमारे गांव में ऐसे पंडित रहते हैं जो ऐसा चमत्कार दिखाते हैं, मुंह से पक्षी निकालते हैं, जरूर ये चमत्कार पंचायत को देखना चाहिए। बुलावा आ गया, सोचा पंचायत में बुलावा क्यों आ गया, तो पंचायत में बुलावा आया माना मैंने कुछ किया है ऐसा। हाँ, तो थोड़ा सा भय लगने लगा मन में कि क्या बात है, पंचायत ने बुलाया है। तो गए वहां पंचायत में, तो पता लगाने की कोशिश की क्यों बुलाया गया है। तो पता चला कि चमत्कार दिखाना है, मुंह से पक्षी निकाल करके दिखाना है। अब वो पंडित जी सोचने लगे पक्षी निकालना, किसने कहा ये, कैसे ये बात पंचायत तक आई। हाँ, दिमाग चलने लगा, तो अब समझ में आया कि सारी करामात किसकी है, ये पत्नी करें, अब पक्षी तो नहीं निकाल सकते। तो जब उनको कहा गया तो उन्होंने एक युक्ति सोची, उन्होंने कहा मैं पक्षी निकाल सकता हूं जरूर, लेकिन जो पक्षी निकलते हुए देखेगा वो पक्षी बन जाएगा। सब चले गए उठ के, किसी को पक्षी थोड़ी बनना था। तो देखा अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं जब हम कोई बात को फैलाते हैं, तो जब वो बात फैलती है तो क्या रूप लेती है, वो जो मूल बात होती है वो तो खत्म ही हो जाती है। और इसीलिए कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, एक कहावत क्यों बनी हुई है, इसीलिए बनी हुई है। और इसीलिए कहते हैं समाने की शक्ति होनी चाहिए, इवन अपने परिवार में भी अगर हम हैं, सास बहू की बात है या आपस में बच्चों की बात है, पति की बात है, तो हमारी बातें घर के बाहर बिल्कुल नहीं, ये सब व्यर्थ चिंतन में, पर चिंतन में आता है। ऐसे ही मुख पर अधिकार माना। मुख से बाबा ने हमें कहा कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो। ये श्रीमत है, मुख से जो वचन निकलने चाहिए वो इसी तरह से ही निकलने चाहिए, इसके अलावा जो भी वचन निकलेंगे वो सब विकर्म। अगर मेरे मुख से कड़वे वचन निकले, दुख देने वाले बोल निकल गए, किसी का अपमान करने वाले, किसी को गिराने वाले, किसी को क्रिटिसाइज करने वाले हो सकते हैं। कभी कभी जब हम किसी से नाराज होते हैं तब हम ऐसे बोल बोलते भी हैं जिससे किसी को दुख पहुंचता है। तो एक का 100 गुना दंड हो जाता है, क्योंकि हमने बाबा की श्रीमत का उल्लंघन किया। अगर एक की पदम गुना कमाई होती है तो एक का 100 गुना दंड भी हो जाता है। तो मुझे देखना है कि मेरे मुख से वही वचन निकलते हैं। गांधी जी ने कहा, 3 बंदर बताते ना गांधी जी के, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। उसकी बजाय हमें क्या कर लेना है, अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। बाबा कहता है नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव कर लो। तो ये पॉजिटिव कर लेना माना मेरी कर्मेंद्रियों पर मेरा अधिकार है। तो चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार जैसे हमने बात की, और चाहे हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं। और यदि हम कर्मेंद्रियों के अधिकारी हैं तो सदा ही मन मौज में रहेगा, सदा ही हम संगम युग के अतिंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे, सदा ही हम स्वमान में रह पाएंगे। लेकिन अगर मन वश में हो जाता है, कभी आंख धोखा देती है, कभी मुख धोखा देता है, कभी कान धोखा देते हैं, मतलब वही जो नहीं देखना चाहिए वो देख लिया, जो नहीं करना चाहिए वो कर लिया, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया, फिर बाद में पछताते जरूर हैं क्योंकि श्रीमत तो मालूम है ना, तो कर तो लिया। तो बाबा कहता है जब अगर हम वश होते रहते हैं, बार बार किसी कर्मेंद्रिय के हम वशीभूत होते हैं, तो वो किसकी निशानी है, अधिकारी आत्मा की नहीं, वो दास आत्मा की निशानी है। और अगर अभी हम कर्मेंद्रियों के दास बनते हैं, रहते हैं, तो भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि भविष्य में हम क्या बनेंगे। अगर हम अधिकारी हैं, अभी सदा प्रसन्न चित हैं, खुश मौज में रह पाते हैं, तो भविष्य में भी राज्य अधिकारी बनने वाले हैं। लेकिन अगर अभी कर किसी भी संस्कार के प्रभाव में, तो फिर भविष्य में भी हमारे को वही प्रलब्ध मिलने वाली है, क्योंकि यही संस्कार हमारे भविष्य में जाने वाले हैं। तो अपने ज्ञान रूपी दर्पण में हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। और बाबा कहते हैं अगर एक भी कर्मेंद्रिय कमजोर है तो वो माया का गेट है, माया उस रास्ते से अंदर आ जाएगी। जैसे चोर कौन सा रास्ता ढूंढता है, सारे दरवाजे बंद होते हैं लेकिन फिर भी वो दरवाजा ढूंढ लेता है जहां जहां कोई ना कोई सुराग होता है। तो ऐसे ही माया भी अपना कोई ना कोई, जो भी हमारी कमजोरी है उसको गेट बना लेती है। और अगर वो अंश रूप में भी है तो वो कब वंश हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए अटेंशन देना है, और अभी से अटेंशन देना है। अभी से अटेंशन देंगे बाबा कहता है तब अंत के पेपर में हम पास हो सकेंगे।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना।
तो बाबा कई बार हमको कहते हैं कि रोज अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा लगाते थे। क्योंकि हमको फॉलो फादर करना है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हम बच्चों को करना है। तो हमें समझ में आ जाएगा मेरी कौन सी कर्मेंद्रिय मुझे बार बार धोखा देती है, फिर योग बल से हम उसको जीत सकते हैं। बाबा कहता है योग से कर्मेंद्रियां शांत और शीतल होती हैं। योग से ही हम कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनते हैं, तो हम अपनी योग की शक्ति को बढ़ाएं। योग में जो हम समय देते हैं उस समय को हम बढ़ाएंगे, बाबा की याद में जितना रहेंगे उतना कर्मेंद्रियों में वो पावर भरती जाएगी और धीरे धीरे हम अधिकारी स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति।
आईसीयू आपको बताना चाहती हूँ, और इस 3 महीने के दौरान जो यहाँ अनुभव हुए वो मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। 13 आपको याद हो, 13 मार्च की होली थी, और 13 मार्च की शाम को आपको पता है होली वाले दिन कोई इधर उधर नहीं जाता, तो ट्रेन की टिकट आसानी से मिल जाती है। तो मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी, आप सभी माताएं बहनें हैं, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी जिसकी मैं 8-9 महीने से ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो डॉक्टरों ने दिल्ली में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स थे, तो उन्होंने बोला कि आपको बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, और फिर भी मैंने हर संभव कोशिश की कि ऑपरेशन की नौबत ना आए। तो जब कोई फायदा नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि बाबा के घर में जाऊंगी, एक संकल्प दिया बाबा को कि बाबा मैं आपके घर में आऊंगी और वहां हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट मिलेगी, जो राय मिलेगी, मैं उसके हिसाब से काम करूंगी, तो मैं निश्चिंत रहूंगी। तो होली की छुट्टियां होती हैं, मैं नौकरी में जो सर्विस भी करती हूं, तो होली की छुट्टियां थी, तो मैं अगले दिन होली की शाम को मैंने टिकट कराया, और मैं 13 मार्च था तो 14 की सुबह मैं यहां मधुबन पहुंच गई। तो सुबह पहुंचते ही मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि एक टेस्ट होता है उसमें खाली पेट रहना होता है, तो मैंने कहा जब हॉस्पिटल जाऊंगी और इस टेस्ट को कराऊंगी। तो मैं खाली पेट ट्रोमा पहुंच गई, वहां डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, दिल्ली में जो रिपोर्ट्स थी वो सब दिखाई और उनसे राय ली, और अंत में ये हुआ कि उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा एक टिश्यू लेंगे, निकालेंगे छोटा ऑपरेशन करके, और उसको अहमदाबाद टेस्ट के लिए भेजेंगे, तो उससे क्या रिपोर्ट आती है फिर आपको बताएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने सोचा बड़ा ऑपरेशन कराने से तो अच्छा है पहले ये टेस्ट करा लेते हैं, बाबा के घर में हूँ, जो होगा अच्छा ही होगा। तो उसी दिन उन्होंने मुझे एडमिशन कर लिया, एक दिन एडमिट करना होता है उस टेस्ट के लिए, उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया और दोपहर 2 बजे का टाइम दिया कि आपको दोपहर 2 बजे ऑपरेशन थिएटर में जाना है। तो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद हाँ, तो उस समय किसी की जरूरत होती है, मदद की जरूरत होती है, सहयोग की जरूरत होती है, मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेली आई थी, तो अचानक ही एक माता पता नहीं कैसे आके मिल गई, फरिश्ता रूप में आई, और जैसे एक माँ रहती है उस समय पर, इस तरह से उन्होंने मेरे साथ मतलब कि वो रही और ऐसे अटैच हो गए कि जैसे ये मेरी माँ से भी बढ़कर है। तो यहाँ कोई नहीं था और वो कैसे मेरे साथ आ गई, ये भी मेरे लिए वंडर था। तो पूरा 10-12 दिन उन्होंने मेरी मदद की, हर तरह से मदद की जितना हो सकती है। उसके बाद जब वो रिपोर्ट आई तो फिर अल्टीमेटली हुआ कि बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और मैंने ऑटो लिया, बोलो ऑटो वाले को बोला मुझे सीधा ट्रोमा ले चलो, किसी को नहीं बताया। ट्रोमा में डॉक्टर थी, उन्होंने अटेंड किया, उन्होंने बोला आपको ये बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा और आपको ग्लोबल जाना पड़ेगा, वहीं सारी सुविधाएं होती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो इमीडिएटली हम हमारे मम्मी पापा भी पहुंच गए। कैसे पहुंच गए, बहुत बुजुर्ग थे, बाबा ने उनको यहाँ कैसे भेज दिया ये भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि वो बहुत एजेड हैं, 84 और 81 ईयर्स ओल्ड। तो हमारा ग्लोबल में ऑपरेशन के लिए हमें डॉक्टर ने कहा आप एडमिट हो जाइए और आपका कल ऑपरेशन होगा। तो वहाँ पे बड़ा ऑपरेशन था तो थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन मुझे बाबा को सब कुछ सौंप दिया, कोई घबराहट नहीं हुई और ऑपरेशन थिएटर से पहले भी मैं एकदम स्टेबल थी। और जैसे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो मैंने बाबा को इमर्श किया, बाप दादा का आवाहन किया और कहा, बाबा ये शरीर मेरा नहीं है, ये आपका है और ये आप ऑपरेशन करेंगे। और मैं ऐसा कहकर बिंदु रूप परम धाम में स्थित हो गई। और फिर डॉक्टर जो थी उनसे मैंने बोला कि डॉक्टर साहब कोशिश करिएगा कि मेरा पेट वेट ना फाड़ा जाए, क्योंकि इसमें जनरली पेट की सर्जरी करते हैं पेट से, तो मैंने कहा उसको अवॉइड करिएगा, ये मेरी इच्छा है। तो उन्होंने बोला हम पूरी कोशिश करेंगे लेकिन उसी टाइम पता लगता है क्या होगा। तो ऐसा कहकर मैं डॉक्टर को फिर परमधाम में बैठ गई और बाप दादा को बोला आप सुप्रीम सर्जन हैं बाबा, आप ऑपरेशन करेंगे। तो जब ऑपरेशन इतना नॉर्मल हुआ कि मेरे साथ एक और माता जी का ऑपरेशन था, उनके में काफी कॉम्प्लिकेशंस आई, प्रॉब्लम हुई, लेकिन मुझे नहीं पता लगा मेरा ऑपरेशन कैसा हुआ। और जब मुझे होश आया तो मैंने पहला क्वेश्चन ही ये किया डॉक्टर से, जो हमारी डॉक्टर थी, हमने कहा डॉक्टर पेट में कोई सर्जरी तो नहीं हुई? बोलते नहीं हुई। तो उनको लगा कि इसको अभी भी याद है और वही बात मेरे से पूछ रही है। और फिर मैं फिर बेहोश हो गई। तो फिर और डायरेक्ट मुझे कहीं आईसीयू वगैरह में नहीं ले गए, मुझे सीधा बेड पे लेके गए। और कितना बड़ा ऑपरेशन कैसे बाबा ने किया ये बहुत बड़ा वंडर है कि मुझे पता ही नहीं लगा कि ऑपरेशन कैसे हुआ। अच्छा, ये तो हुई ऑपरेशन की बात। उसके बाद है ऑपरेशन के बाद जो रेस्ट पीरियड देते हैं ना, ये करना है ये नहीं करना है, ये दवाई खानी है, इतना रेस्ट करना है, वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पीरियड होता है और वो भी 3 मंथ्स का। तो मुझे 3 महीने से ज्यादा, मेरे घर का कोई रिलेटिव यहाँ नहीं था, बाबा ने कैसे मुझे यहाँ पालना दिया, 3 महीने तक यहीं रखा बाबा ने मुझे, मेरे को घर भी नहीं भेजा। और यहाँ पर मुझे बाबा ने ट्रोमा में भी रखा, ग्लोबल में भी रखा, 2 महीने शांतिवन रखा और 1 महीने ज्ञान सरोवर रखा और पांडव भवन भी रखा। तो मतलब कि जो एक बोरिंग पीरियड होता है कि घर में हम कितने बोर हो जाते हैं एक बेड पे पड़े पड़े, तो मुरली सुनने भी नहीं जा सकते थे क्योंकि रिश्तेदार क्या बोलेंगे घर वाले, वैसे तो बेड रेस्ट चल रहा है, मुरली सुनने जा रही है। तो यहाँ बाबा ने हर रोज मुरली सुनाई, मुरली मॉर्निंग क्लास की मुरली भी सुनी, पुरुषार्थ भी किया, अमृत वेला भी किया, नुमाशाम योग भी किया इस पीरियड में होते हुए भी, और क्लासेस भी अटेंड की। तो बाबा ने जो है पूरा आज तक हर दिन नवीनता का अनुभव हुआ। तो मेरे अंदर एक संकल्प चलता था, वो बाबा ने मुझे सिद्ध करके बताया। क्या मैं कहती थी, बाबा मेरे परिवार में कोई भी ज्ञान में नहीं है, तो अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी कौन देखभाल करेगा, आप तो निराकार हो तो कौन मेरी मदद करेगा, मेरा तो कोई है ही नहीं मेरे साथ। तो बाबा ने ये सिद्ध करके बताया, इसके बच्ची में ऐसे ऐसे करके बच्चों की मदद करता हूँ, मैं निराकार हूँ लेकिन ऐसे। और इतना अच्छा खाना पीना वैरायटी, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, घर में रह करके मैं एक रोटी सब्जी खाती, दाल भुर्जी बनाती, खिचड़ी बनाती, वो भी अपने आप बनाना पड़ता। यहाँ बाबा ने इतना वैरायटी खिलाया, कभी किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, कभी कोई कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, कभी कल्चरल विंग का प्रोग्राम, कभी कुछ। और ज्ञान सरोवर ने बाबा ने मुझे 1 महीने सेवा भी दी ज्ञान सरोवर में। मैं यहाँ गर्मी हो गई थी तो एक भाई मुझे मिले, उन्होंने बोला कि दीदी आप ठीक हैं? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ, लेकिन इतनी गर्मी में थोड़ी घबराहट हो रही है। तो पता नहीं कैसे शाम को उनका फोन आया, ज्ञान सरोवर स्पार्क विंग में आप चले जाइए, वहाँ सेवा भी मिलेगी और आप वहाँ रह लीजिएगा। तो अगले दिन सुबह मुझे ज्ञान सरोवर भेज दिया बाबा ने, और वहाँ तो ठंडा ही होता है, और स्पार्क विंग में 1 महीने की सेवा भी दे दी और वहाँ रही अच्छी तरह से और सेवा भी की, मतलब सेवा भी की और सारा पुरुषार्थ भी पूरा हुआ, पुरुषार्थ भी पूरा हुआ। और मेरा ट्रीटमेंट भी कैसे हुआ, कैसे ऑपरेशन हो गया, कैसे मैं ठीक हो गई, अब आपके सामने हूँ, रेडी टू मूव हूँ, अपने वर्क प्लेस पे जा सकती हूँ, अच्छे से कर सकती हूँ। तो करने वाला कौन? बाबा। कोई रिलेटिव नहीं, नौकरी करती हूँ, कोई ऑफिस से फोन नहीं आया ये प्रॉब्लम है आ जाओ, घर से किसी ने फोन नहीं किया।
इनका अनुभव सुनकर के हम सब समझ रहे हैं कैसे बाबा हर कदम पर हमारा साथ निभाता है। ऐसे नहीं कि कोई साकार नहीं साथ चाहिए, लेकिन अगर बाबा है तो बाबा अपने आप हमारे लिए रास्ता निकालता जाता है और सब काम सहज सफल हो जाते हैं। अभी कुछ बहनें गीत भी गाएंगी, आपने बहुत अच्छा। बस बस नेक्स्ट 4-5 बहनें हैं।
बाबा मम्मा डे का एक अनुभव
था, बस हो गया।
थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच।
और आपको पता है शाम को 5 बजे आपको डायमंड हॉल में आना है, योग रहेगा 5:30 तक, 5:30 से 6:30 सूरज भाई जी का क्लास है। हाँ, फिर इसीलिए कोई मिस ना करे, सब टाइम पर क्लास में आ जाएंगे। और कुछ बहनें गीत सुनाएंगी, तो आप गीत भी सुन करके जाएंगे, फिर उसके बाद खाने पर जा सकते हैं।
ओम शांति। बाबा का गीत गाऊंगी मैं आपके सामने। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, मेरे बाबा है साथ साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा।
ओम शांति। अपना बनाकर बाबा ने जीना सिखा दिया, काबिल नहीं थे प्यार के काबिल बना दिया। ढूंढ रहे थे जिसको कण कण और पत्ते पत्ते में, उसने अपना बनाकर अपना घर ही दिखा दिया। व्यर्थ बोलने में और व्यर्थ सोचने में शक्ति नष्ट हो रही थी, बाबा ने तो सर्वश्रेष्ठ संकल्प सिखा दिया। ढूंढ रहे थे मंदिरों और मस्जिदों में, ढूंढ रहे थे मंदिरों और मस्जिदों में, अपना बनाकर उसने मंजिल तक पहुंचा दिया। अपना बनाकर उसने अपना घर ही दिखा दिया। वह मेरे बच्चे कहकर गले से लगा लिया। अपने को पापी हूँ कपटी हूँ समझ रहे थे, मीठे बच्चे कहकर लाडले बच्चे कहकर हमारा मान ही बढ़ा दिया। बाबा ने तो हमारा मान ही बढ़ा दिया। विकारों की अग्नि में जल रहे थे, बाबा ने पवित्रता का फरिश्ता ही बना दिया। बाबा ने पवित्रता का फरिश्ता ही बना दिया। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, आत्मा का ज्ञान देकर बाबा ने सब भेद ही बता दिया। बाबा ने सब भेद ही बता दिया। पूज रहे थे देवी और देवताओं को, बाबा ने तो खुद देवता बनने का रास्ता ही बता दिया। बाबा ने तो खुद देवता बनने अपना बनाकर जीना सिखा दिया। वहाँ मेरे बच्चे कहकर गले से लगा लिया।